नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से सातवां स्कंध अध्याय सात। प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा, श्लोक संख्या 40। एवं हि लोकः कर्तुभिः कृता सहिष्णवा सातिशया न निर्मला तस्मात् अदृष्ट अश्रुत दूषणम् परम् भक्त्या उक्तया ईशम् भजत आत्मलब्धये। एवं हि लोका कृतभिः कृतामि एवं हि लोका कृतभिः कृतामि क्षयिष्णवसातिशयान निर्मला तस्मादृष्टम् श्रुतदूषणम् परम् तस्मादृष्ट श्रुतदूषणम् परम् भक्त्योक्त एषम् भजतात्मलब्धये। एवं हि लोका क्रतुभिः कृतामि क्षयिष्णवसातिशयान निर्मला तस्मादृष्ट श्रुतदूषणम् परम् तस्मादृष्ट श्रुतदूषणम् परम् भक्त्योक्त एषम् भजतात्मलब्धये। एवं हि लोका क्रतुभिः कृतामि क्षयिष्णवसातिशयान निर्मला तस्मादृष्टाश्रुदूषणम् परम् भक्त्योक्त एषम् भजतात्मलब्धये। माता जी लोग, एवं इसी प्रकार जिस तरह संसारिक संपत्ति तथा कुटुंबी नश्वर हैं ही निश्चय हैं लोका उच्चतर लोक यथा चंद्रमा यथा स्वर्ग चंद्रमा सूर्य तथा ब्रह्मलोक कर्तु भी बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करने से कृता प्राप्त किए अमी ये सब लोक लोकांतर क्षयिष्णव नश्वर क्षणभंगुर अस्थायी सातिशया यद्यपि अधिक आराम दे तथा अच्छा लगने वाला है न नहीं निर्मला शुद्ध या दुखों से परे तस्मात इसलिए अदृष्ट श्रुत न तो देखा हुआ न सुना हुआ दूषणम त्रुटि परम परम भक्तया अत्यंत भक्तिपूर्वक उक्तया जिस तरह वैदिक साहित्य में वर्णित है ईशम परम भगवान भजतः पूजा करो आत्मलब्धे आत्म साक्षात्कार के लिए। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके मनुष्य सर्वादि लोक तक ऊपर उठ सकता है। यद्यपि स्वर्गलोक का जीवन पृथ्वी के जीवन के अपेक्षा सैकड़ों हजारों गुना अधिक सुखकर है, तो अभी स्वर्गलोक न तो शुद्ध है न भौतिक जगत के कलमश से रहित है। सारे स्वर्गलोक भी नश्वर है, अतएव ये जीवन के लक्ष्य नहीं है। किंतु यह न तो कभी देखा गया नहीं सुना गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में उन्माद होता है। फलस्वरूप तुम्हें अपने निजी लाभ तथा आत्म साक्षात्कार के लिए शास्त्रोक्त विधि से अत्यंत भक्ति के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, छीणे पुणे मर्तलोकम विसंति। यहां तक कि यदि कोई पशुओं की बलि रूपी पाप पूर्ण कृत्यों को संपन्न करके बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाए, तो भी स्वर्गलोक के सुख का स्तर कभी निरापद नहीं रहता। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी ऐसा ही जीवन संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार स्वर्ग प्राप्त कर लेने में कोई व्यवहारिक लाभ नहीं है। निस्संदेह पुण्य कर्मों के फल क्षीण होने पर मनुष्य को इसी पृथ्वी पर लौटना होता है। वेदों का कथन है, तदत एथ कर्म जितो लोक क्षीयते एवाम उत्र पुण्यजित लोक क्षीयत। तदत एथ कर्म जितो लोक क्षीयते एवं युवात्र मूत्र पुण्य जितो लोक क्षीयते क्षीयत। इस प्रकार कठिन श्रम से अर्जित यहां भौतिक पद काल क्रम में समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का स्वर्गवास भी अंतोगत्वा समाप्त हो जाता है। मनुष्य अपने पुण्य कर्मों की मात्रा के अनुसार विभिन्न प्रकार की जोनियां प्राप्त करता है, किंतु उनमें से एक भी स्थायी नहीं होती, अतएव वे सब अशुद्ध होती है। फलस्वरूप मनुष्य को चाहिए कि वह उच्च लोक जाने के लिए प्रयास न करे, क्योंकि उसके या तो पृथ्वी क्योंकि उससे या तो पृथ्वी पर लौटना होगा या इससे भी नीचे नरक लोकों में जाना होगा। ऊपर जाने तथा नीचे आने के इस चक्कर को समाप्त करने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में घूम रहा है, कभी उच्च लोक जाता है तो कभी अधोलोक में जाता है, किंतु यह तो जीवन की समस्याओं का कोई हल नहीं हुआ। हाँ, यदि कृष्ण कृपा से किसी को कृष्ण प्रतिनिधि गुरु मिल जाए तो वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके भगवत धाम जाने का संकेत पा सकता है। वास्तव में यही वांछनीय है। भयतात्मलब्धये मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकय चक्षुर्जिमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भूतैर्महद्भियैमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूसुपुरुषम्। भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् शूलम् कृषिष्ठम् भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तब भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखकाज, जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो पूर्ववर्ती श्लोकों में प्रहलाद महाराज बहुत ही सुंदर शिक्षा दिए हैं। श्लोक संख्या 34 से लेकर के श्लोक संख्या 36। इन तीन श्लोकों में जो लोग भगवत भक्ति के चरम सीमा को प्राप्त कर लिए हैं, जो रति को प्राप्त कर लिए हैं, उनके लक्षणों का वर्णन किया गया है। देखिए प्रहलाद महाराज यहां पर उन लोगों से बात कर रहे थे जो आसुरिक खानदान में जन्मे हुए थे। असुरों का जो स्वभाव है, उनका चाल चरण है, उनका लक्षण है, इसका वर्णन भगवान भगवत गीता के 16वें अध्याय में अच्छी तरह से किए हैं। असुरों का स्वभाव है खूब आनंद भोगो, यहां भोग सकते हो ठीक है, तो ऊपर का भी आनंद भोगो, स्वर्ग लोक तक का, लेकिन आनंद भोगो। सभी आनंद चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के भोग भोगने का अलग तरीका है। वे लोग गलत रास्ता अपनाते हैं आनंद भोगने के लिए, विकर्म इत्यादि करते हैं। तो श्लोक संख्या 37 में उसी का वर्णन किया गया है कि हे मित्रों, प्रहलाद जी कहते हैं, इस यह जो भौतिक संसार है यह अशुभ है, यह दलदल के समान है। जो एक बार इस भौतिक संसार में आ जाता है और इस भौतिक संसार में आकर के सुख भोगने का इच्छा करता है, यह संसार अशुभ है। तो जिस पर अशुभ का स्टैंप लग जाता है वो अभी अशुभ हो जाता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि इस अशुभता से दूर होने के लिए, इस दलदल से निकलने के लिए, संसार चक्कर को मिटाने के लिए, हे मित्रों, भक्ति करनी चाहिए। तो मानव कहते हैं भक्ति करने से क्या फायदा, तो कहते हैं भक्ति करने से सुख की प्राप्ति होती है, जिस सुख को तुम लोग ढूंढ रहे हो। भगवान भगवत भक्ति के ज्ञान को और भक्ति के सुख ने सुसुकम कर्तुम अव्ययम, भगवत भक्ति वह सुख देता है जो कभी खत्म नहीं होता, अव्ययम जो व्यय कभी नहीं होता है, हमेशा रहने वाला सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए श्लोक संख्या 37 में कहते हैं उसी सुख को कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म सुख, ब्रह्मानंद का सुख, निर्वाण का सुख इत्यादि। इसलिए हे मित्रों, हम सबके हृदय में भगवान विद्यमान हैं परमात्मा के रूप में, उन्हीं का भजन करो, इस प्रकार से तुम लोग भजन कर सकते हो। तो सज्जू का समय था तो असुर बालक पूछते हैं कि नहीं भाई, भक्ति करना तो मैं हम लोग सुने बड़ा कठिन है, बहुत बड़ा बड़ा तपस्या करना पड़ता है। सही बात है, भक्ति करना कठिन है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनका जीवन बड़ा जटिल है और सब चीज को जटिल बनाकर रखते हैं, लेकिन जिनका जीवन सामान्य है, सरल है, निश्चल है, कटुता कपटता छल इत्यादि नहीं है, उनके लिए भक्ति आसान है। तो ही श्लोक संख्या 38 में वर्णन कर रहे हैं कि नहीं भाई, भक्ति कठिन नहीं है, भक्ति बड़ा आसान है। इस संसार में धन कमाना को लोग कहते हैं बड़ा कठिन है धन कमाना, तो आजकल लोग शॉर्टकट धन कमाने का तरीका अपनाए हैं, वो किडनैपिंग कर लेते हैं, है ना, फिर फोन करते हैं भाई इतना लाख रहा हो, शॉर्टकट फटाफट, और अफीम बेचते हैं, क्या क्या करते हैं, वो चाहते हैं, समझते हैं धन से मैं सुखी होऊंगा, तो शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। तो ये असुर लोग समझते हैं कि भक्ति करना, सज्जू का समय तपस्या करना, ये तो बहुत कठिन काम है, शॉर्टकट अपना लो, प्रहलाद जी तो बड़े निश्चल प्रकृति के हैं, सरल हृदय के हैं। कहते हैं भाई किसने तुमको कह दिया कि भजन करना इतना कठिन है? अरे संसार में सबसे आसान चीज है वह है भजन करना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। भक्ति आसानी से हो सकती है, अन्य सब चीजों के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, लेकिन भक्ति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, बहुत आसानी से। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान हम सब लोगों के हृदय में हैं, बिल्कुल हमारे नजदीक हैं। यदि संसार में कोई हमसे ज्यादा नजदीक हैं तो वे हैं परमात्मा। श्लोक संख्या 38 में इसका वर्णन किया गया है। कहते हैं को अति प्रयासो असुर बालका हरे। हे असुर बालकों, हे मित्रों, किसने कह दिया तुम लोगों से कि बहुत प्रयास करना पड़ता है भक्ति में? भक्ति तो बहुत आसान है, बल्कि बाहर के चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। दूर है ना, ये पानी पीना बड़ा हाथ उठाना पड़ता है, इतना दूर है पानी उठाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। खाना भी होता है तो प्रयास करना पड़ता है। लेकिन प्रहलाद जी बहुत सुंदर सिद्धांत बता रहे हैं कि भक्ति करना कितना आसान है। भगवान बिल्कुल नजदीक में बैठे हुए हैं परमात्मा के। रूपासने स्वछिद्र छिद्रवस्त, और वे भगवान हृदय में तो हैं ही, हमारे बड़े शुभ चिंतक हैं। प्रयास से जो वस्तुएं प्राप्त हम लोग करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारा शुभ करे, लेकिन जो भगवान की तरफ मुड़ता है ये गारंटी है कि उसका अशुभ नहीं हो सकता है, उसका केवल शुभ ही होगा। जो भगवान की तरफ मुड़ेगा, भगवान को देखेगा, उसका शुभ ही होगा। भगवान सबके सखा है। कहते हैं स्वस्यात्म सख्युर अशेष देहिनाम, समस्त प्राणियों के भगवान सखा हैं। जय श्री श्री गौनिताय राधारस बिहारी ललिता विशाखा सीताराम सुमन के। वे भगवान हम सब लोगों के सखा हैं, बड़े सुहृद हैं, सखा हैं। शांति प्राप्त करने का यही तरीका है। सुहृदम सर्वभूतानां यह जानाति, हाँ कैसे है, मुक्तारम जुगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। भगवान सबके सुहृद हैं। यदि हम एक पैर भगवान के तरफ आते हैं तो भगवान अनंत पैर हमारे तरफ आते हैं। भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं, अदृश्य रूप से भी हम लोगों का सहयोग करते हैं यदि हम लोग उनके शरण में रहे। आप लोग ये देखे होंगे कहीं कहीं, मी एंड माई लॉर्ड है, एक कैलेंडर भी बना दिए थे, मी एंड माई लॉर्ड। एक व्यक्ति था, वो ड्रीम देख रहा था कि भगवान और वो दोनों चल रहे थे समुद्र के किनारे। तो जब पीछे देखा तो कहीं कहीं चार पैर थे और कहीं कहीं दो पैर थे। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे नहीं, तो उसने पूछा कि चार पैर तो समझ रहा हूं, लेकिन दो पैर किसके हैं? तो कहा कि देखो भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। जब तुम मेरा चिंतन करते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, तो दो पैर तुम्हारा, दो पैर हमारा, चार हो गया। और जब तुम हमें कभी भूल जाते हो तो तुम पर दुख आ जाता है। तो दुख आ जाता है, इसका मतलब आप भाग जाते हो, क्यों दो ही पैर है, हमारा पैर है? कहा नहीं नहीं, देखो ध्यान से, वो तुम्हारा पैर नहीं, वो मेरा पैर है, मैं तुमको टांग लेता हूं। जब दुख आता है तो मैं तुमको टांग लेता हूं। यदि हम भगवान की तरफ जाएंगे तो भगवान अनंत रूप से हमारे पाएंगे, भगवान अनंत हैं। तो ही प्रहलाद जी कहते हैं कि भैया भजन करना बड़ा आसान है, इसमें ज्यादा प्रयास भी नहीं। भगवान कितना सरल कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मई भक्तिया पृछति तदहम भक्ति पुरत स्नामी प्रत्यात्मन। मैं खुश हो जाता हूं यदि कोई तुलसी पत्र अर्पण करता है मुझे, कोई फूल अर्पण करता है, कोई जल भी अर्पण करता है, लेकिन होना चाहिए प्रेम से। भगवान बड़ा सुंदर शब्द यहां पर प्रत्यात्मन, प्रेम से। यदि हमें किसी में प्रेम होगा तो हम उसको लचीदाना नहीं देंगे और अपने 56 भोग नहीं खाएंगे। कोई लचीदाना देता है अपने 56 भोग खाता है तो भगवान से प्रेम नहीं है। जिसके प्रति प्रेम होता है, जैसे मां बाप का अपने बच्चों के प्रति, पत्नी का अपने पति के प्रति, जब प्रेम होता है तो प्रेम का मतलब होता है सेक्रीफाइस। बाप मां अपने बच्चों के सुख के लिए अपने सुख को सेक्रीफाइस करते हैं, अपने फटा पुराना पहन लेते हैं लेकिन बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, अपने पानी पीकर सो जाएंगे लेकिन बच्चों को खिला करके ही सोएंगे, वैसे ही पत्नी। तो ये है प्रेम की परिपाटी। हरे कृष्णा। प्रेम की परिपाटी है कि जो हमारे प्रेम का ऑब्जेक्ट है उसको हम सर्वस्व दें, सब कुछ दें, अच्छा से अच्छा वस्तु उनको हम दें। यह है प्रेम का लक्षण। तो भगवान को जो लचीदाना देता है और अपने ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करता है तो समझना चाहिए कि उसमें प्रेम नहीं है। भगवान इतने मूर्ख नहीं है, है? कि बेटा अपने 56 भोग खा रहा है, हमको लचीदाना दे रहा है, समझता है भगवान को भोग लगाता हूं। भगवान जरूर खुश हो जाते हैं, कहते हैं यदि कोई प्रेम से इतना है तो मैं खाता हूं, प्रत्यात्मन। यदि प्रेम पत्रम पुष्पम लम तोयम यो मे भक्त्या प्रक्षति तदहम भक्तोपहृत अस्नामी प्रत्यात्मन, अस्नामी मैं खाता हूं, प्रत्यात्मन प्रेम से। यह है प्रेम की परिपाटी। तो भगवान को प्रसन्न करना संसार में सबसे आसान चीज है। जिसके पास धन दौलत है वो भी प्रसन्न कर सकता है भगवान को, और जिसके पास कुछ भी नहीं है, कंगाल है, वो भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चाहिए क्या? प्रेम। दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। भगवान प्रेम के पुजारी हैं। तो ये प्रहलाद जी कहते हैं कि भैया भगवान को प्रसन्न करना है सखा बड़ा आसान है, सबको भी प्यार करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं। भला भैया तुम ही लोग सोचो, ऐसे भगवान को जो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं उनको छोड़ कर करके और भोग सामग्री इकट्ठा करने के लिए दर दर में भटकना, कहते हैं राम 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 राम, यह कितनी बड़ी मूर्खता है। कहते हैं सामान्यतः किम विषयोपपादय, धिक्कार है वैसे जीवन का, राम राम, धिक्कार है वैसे जीवन का, जिससे देखा जाता है कि प्रायः लोग सामान्यतः किम विषय उत्पादय, विषय उत्पादन में, धन दौलत को कमाने में अपना जीवन लगाते हैं। धिक्कार है वैसे लोगों का और धिक्कार है वैसे धन दौलत का। अब धिक्कारने से प्रहलाद महाराज का मन नहीं भरा, तब धिक्कारने का खुलासा कर रहे हैं। हमारा बेचारा वामन देव अब नहीं रहे, वामन देव चले गए संसार को, ये वामन देव नहीं, एक दूसरे वामन देव थे। तो उर्दू का शब्द बोलते थे, भगवान ने खुलासा किया है, तो खुलासा शब्द मुझे याद है। खुलासा मतलब खोल खोल करके उसका वर्णन किया। तो विषय उपवादये इस शब्द का खोल खोल कर भगवान वर्णन किए हैं श्लोक संख्या 39 में। उन विषयों का वर्णन कर रहे हैं जिन विषयों के लिए व्यक्ति मूर्खतापूर्वक भटकता रहता है। कहते हैं राय कलत्र पशवा सुतादयो गृहा मही कुंजर कोश भूतय सर्वेर्थ कामा क्षण भंगुरायसु कुर्वन्ति मर्त्य किम कियत् प्रियं चला। कहते जो चलायमान है, जो क्षण भंगुर है, उसके लिए मूर्खता बस व्यक्ति व्यर्थ में अपना जीवन गंवाता है। बड़ा सुंदर एक भजन है, दुर्लभ मानव जन्म लभी आ संसारे कृष्ण ना भजनी दुख कहिबो कहारे। ओ वाला और एक और है ऐसा ही, उसे बताया गया है कैसे व्यक्ति परिश्रम करता है धन कमाने के लिए। तो उसी कहा कहते हैं राय कलत्र संपत्ति, कलत्र अपनी पत्नी और सखा इत्यादि, कलत्र पुत्र परिवार, पशव पशु, सुतादयो पुत्रादि, आदयो मीन्स और सगे संबंधी, सुतादयो आई मीन कितना करें, कहते हैं कि सब कलत्रम पशव, एक पशु नहीं कितने पशु, सुतादय पुत्र पुत्रियां और भाई बहन उनके पुत्र पुत्रियां इत्यादि सबके लिए व्यवस्था करता है गृह, उसके बाद धन संपत्ति जायदाद पृथ्वी खेत इत्यादि, मही कुंजर कोश भूयत हाथी घोड़े इत्यादि, गाय पशु इत्यादि, धन संपत्ति कोष भूतय तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्य सारा सामग्री वो जुटाता है। सर्वेर्थ काम क्षणभंगुर आयसु, ये क्षणभंगुर सुख देते हैं, ये हमेशा टिकने वाला सुख नहीं देते हैं। संसारिक ये वस्तुएं क्षणभंगुर है। जो क्षण भांगुर है सांसारिक वस्तुएं क्षण भांगुर है, ये देह भी क्षण भांगुर है। तो जो क्षण भांगुर है वो क्या सुख दे सकता है, जो स्वयं क्षण भांगुर है, और जो क्षण भांगुर देह है उससे हम क्या सुख भोग सकते हैं। आत्मा तो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, शरीर क्षणभंगुर है, इंद्रियां क्षणभंगुर है, और इन क्षणभंगुर इंद्रियों से हम इस संसार में सुख भोगना चाहते हैं। और किन लोगों के साथ में सुख भोगना चाहते हैं, उन लोगों के साथ में जो कि क्षणभंगुर है, और यही कहलाता है माया। अर्जुन का सबसे बड़ा रोग यही था, अर्जुन भी क्षणभंगुर इंद्रियों से क्षणभंगुर लोगों के साथ में क्षणभंगुर सुख भोगना चाहते। इसलिए अर्जुन ने कहा यहां तक आसक्ति थी कि कृष्ण का शरणागत होने के बाद भी अर्जुन कहते हैं कि प्रभु सब कुछ कहना लेकिन लड़ाई करने के लिए मत कहना, हाथ जोड़ दिए सब कुछ कहना, भगवान कहते हैं मूर्ख कहीं का। तुम इन क्षण भंगुर लोगों के लिए शोक कर रहा है। सोचान सोचस्तम प्रज्ञा वदान से भाषते गतासुन गतासुन शर नान चिंती पंडिता। बात तो बड़ा पंडित के समान किया है लेकिन है मूर्ख। ये मूर्खता है कि क्षण भंगुर लोगों से आशा रखना कि हमको सुख देंगे। यदि वो देंगे भी तो क्षण भंगुर सुख देंगे, और हम लोगों को चाहिए परमानेंट, चाहे नौकरी हो चाहे कुछ भी हो, परमानेंट चाहिए, क्षण भंगुर नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग क्षण भंगुर हैं ही नहीं, हम तो सच्चिदानंद हैं, सब हमेशा रहने वाले हम, तो इसलिए हमारी सब वस्तुएं हमेशा रहने वाली चाहिए। ये सब क्या सुख दे सकती हैं? कुर्वन्ति मर्त्य कियत् प्रियं चला। ये जो स्वयं क्षण भंगुर है, कियत् कैसे प्रियं, मतलब तुम्हें आनंद दे सकती हैं। हे मित्रों, ये वस्तुएं तुम्हें आनंद नहीं दे सकती है। तो अभी तक प्रहलाद महाराज संसारिक सुख का वर्णन किए, ये सब जो है ये सब संसार वाले हैं, राय इनमें धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, कलत्र पत्नी इत्यादि, ये भी संसारिक हैं, पशव संसारिक हैं, सुतादय संसारिक हैं, गृह लोग धन कमाते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, बड़ा बड़ा अट्टालिका बनाते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन अंत में सब तो यही रह जाने वाला है। अंत में कोई हमारे साथ नहीं जानेगा, जीवन भरे सुख नहीं दिए और अंत में भी सुख नहीं देंगे। तो कुछ लोग जो थर्ड क्लास के लोग होते हैं, वे लोग इस संसार में सुख भोगने के लिए गधा के समान परिश्रम करते हैं धन कमाने के लिए। जो इस संसार में सुख भोगना चाहता है वह गधा नंबर एक है। कुछ लोग थोड़ा घोड़ा होते हैं, इसे थोड़ा ऊपर होते हैं, तो संसार का सुख नहीं भोगना चाहते हैं, वो ऊपर वाले संसार का सुख भोगना चाहते हैं, यानी स्वर्ग आदि का सुख भोगना चाहते हैं। तो इस संसार के सुख भोगने वाले को प्रहलाद जी कहे तुम लोग गद्दे हो। कियम प्रियत चलाम, जो भाग रहा है उसके पीछे दौड़ना पागलपन नहीं तो और क्या है, जो कभी रुकने वाला नहीं है, ये मूर्खता है। राम राम, इसके लिए भटकना ये मूर्खता है। और कुछ लोग इसके लिए नहीं, आगे वाले ऊपर के लिए, तो उसका वर्णन अब यहां पर इस श्लोक में किया गया है। कहते हैं एवं हि लोका कर्तुभिकृतामी, एवं इन सब का जो संसार का है, जो गधे लोग हैं संसार में सुख भोगने के लिए धन कमाते हैं ये सब करते हैं, उन गधों को छोड़ो, वो लोग तो गद्दा हैं, मूर्ख हैं ही। ही मतलब निश्चय ही, इस संसार का जो सुख है वो चलायमान है, चपल सुख लवला गिरे है, कैसे है, विफल से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लवला गिरे। गोविंददास कविराज कहते हैं कृपण दुर्जन वो मूर्ख व्यक्ति है जो चपल सुख लवला गिरे, जो फ्लिकरिंग हैप्पीनेस के पीछे दौड़ रहा है वो महामूर्ख है, गद्दा नंबर एक है। कहते ही मतलब निश्चित ही, एवं ही, तो कहते हैं ये लोग नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो ऊपर वाले संसार के लिए काम करते हैं, माने प्रश्न कर रहे हैं असुर बालक कण, तो उसका उत्तर देते हैं, कहते हैं एवं ही लोका अन्य लोक स्वर्ग आदि लोक, देखिए सात लोक यहां से ऊपर है और सात तल नीचे है। ऊपर का जो लोक है उन लोकों में बहुत सुख है, स्वर्ग लोक से ज्यादा सुख है महर लोक में, महर लोक से ज्यादा सुख है जन लोक में, जन लोक से ज्यादा सुख है तपलोक में, सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में। तो लोक लोकांतरों का जो सुख है बहुत ज्यादा है एक दूसरे से बढ़कर के, इसीलिए कहते हैं सातिशय सौ अतिशय बहुत ज्यादा सुख है। कहते हैं एवं हिलो का कर्तुभी कृता अमी कर्तुभी यानी जग इत्यादि कर कर करके पुण्य कर्म कर कर करके भगवत गीता में भगवान बताए हैं कि चौदह चौदह यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलम्याति देहभृतः तदोत्तम विदाम लोकान तदा उत्तम विदाम लोकान अमलां प्रतिपद्यते रजसी प्रलय गत्वा सर्वसंगी सुजायते तथा प्रलयंतस्तमसि मुद्ध जोनि सुजायते। भगवान कहते हैं जो कोई सत्गुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है, जब कोई रजोगुण में मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशु जोन में जन्म धारण करता है। तो ऊपर के लोक में जाने के लिए सत्गुणी काम करते हैं, यथा तालाब खोदवाना, कुआं खोदवाना, धर्मशाला बनवाना, उसके बाद बड़ा बड़ा यज्ञ करना, ये हॉस्पिटल खोलवाना, स्कूल खोलवाना, ये पुण्य काम नहीं है। आज लोग इसी को पुण्य काम समझते हैं, लेकिन शास्त्र इसको पुण्य कार्य नहीं कहता है, ये पायस एक्टिविटीज नहीं है, बल्कि सिंफुल एक्टिविटीज है। क्योंकि परकर्म भयावह, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये गवर्नमेंट का काम है, प्रजा गवर्नमेंट टैक्स देती है, और राजा का काम है कि देखना कि हमारा प्रजा सुशिक्षित है, हमारा प्रजा सुखी है। भगवान राम को सिद्ध करना पड़ा, जब उस ब्राह्मण का बेटा मर गया था तो ये उत्तरदायित्व भगवान राम का हो गया था कि मेरे राज्य में कैसे मर गया कोई, जाकर पता लगाना पड़ा। तो देखिए कि शूद्र वेद पढ़ रहा है, गड़बड़ कर रहा है, पर कर्म भयावह, इसका परिणाम ये भोगना पड़ा। तो ये गवर्नमेंट का काम है, हॉस्पिटल खोलवाना, स्कूल बनवाना इत्यादि इत्यादि। तो पर कर्म भयावह, दूसरे का यदि हम कर्म करेंगे तो भयावह होगा, भगवान गीता में कहते हैं। इसलिए ऐसे काम में नहीं फंसना चाहिए। पुण्य कामों के लिस्ट में हॉस्पिटल खोलवाना, स्कूल बनवाना नहीं बताया गया है। पुण्य कार्यों के लिस्ट में कर्तु शब्द यहां पर आया है, कर्तु भी पुण्य कर्म, जैसे यज्ञ इत्यादि करना। यज्ञ में देवताओं के प्रसन्नता के लिए किया जाता है काम। यदि देवता के प्रसन्नता के लिए काम करेंगे तब तो ऊपर जाएंगे भाई देवता के लोक में, यहां तो हम मनुष्यों की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं, तो रहो यहीं पर, ये रजोगुणी है, ये सतगुणी नहीं है, ये पुण्य कार्य नहीं है। तकर्त भी यज्ञ करना, तालाब खुदवाना, सराय या धर्मशाला बनवाना, ये सब पुण्य कार्य है। तो बहुत लोग पहले जमाने में लोग यही करते थे, आजकल लोग ये नहीं करते हैं। आजकल तो तालाब खुदवाने जाओ आप तो म्युनिसिपैलिटी वाले पहले पहुंचेंगे, बोलेंगे स्विमिंग पूल बना सकते हो तालाब नहीं बना सकते, कोई गिरकर मर जाएगा तब कौन उसका उद्धारी उत्तरदायी होगा। हमारे सामने एक बड़ी विपट समस्या आ गई है, कानपुर में हम तालाब बनाना चाहते हैं, परमिशन नहीं मिल रहा है, कहते हैं आप 4 फीट से ज्यादा गहरा नहीं खोद सकते हो। लो भाई, शास्त्र में वर्णन किया गया है कि तालाब हो 9 कुएं का 7 कुएं का 5 कुएं का तालाब होता है, 5 कम से कम 5 कुएं का, चारों कोने पर 4 कुआं और बीच में जाठ, बीच में 1 कुआं, वहां पर देवता लोग निवास करते हैं। वैसे हैं 9 तालाब नौ कुएं का, सात कुएं का, अलग अलग तालाब का वर्णन किया गया है। तो ये केडीए वाले कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलता है नहीं आप नहीं कर सकते हो, कोई मर जाएगा तब। तो मैं कहा गंगा जी मुफ्त में बह रही, कोई मर गया तब कौन उसका जिम्मेदार होगा। कहते हैं वो तो नेचुरल है स्वामी जी। तो चार फीट छह फीट क्या स्विमिंग पूल है, कौन तालाब है, वो पुण्य कार्य है, स्विमिंग पूल बनाना पुण्य कार्य थोड़े है, जमाना बदल गया है। एनीवे एवं हिलो का कर्तुभि कृता अमी, जब इस प्रकार से कोई पुण्य कर्म करता है तो कृता अमी भिन्न भिन्न लोक लोकांतरों को प्राप्त करता है। लेकिन उन लोक लोकांतरों में एनीवे श्लोक संख्या 40 से 47 के बीच में श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं यद्वा आत्मनो लभ्य भजता अन्यथा आत्मनो नाशम आत्मनम नाशयितुम यथा। देखा गया कि आत्मा का उद्धार कैसे हो सकता है, यह हमें प्रयास करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आत्मा का उद्धार नहीं करता है तो अन्यथा आत्मनम नाशम, वो आत्मा का नाश करता है। तो यहां पर आत्मा के उद्धार का विषय बताया गया है ये दो श्लोक 39 और 40। 39 में संसारिक विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है और 40 में वर्णन किया गया है स्वर्ग के सुख का। कहते यन्नम दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्त अनंतरम अभिलाषोपनीतचम तस् सुखम स्वपदास्पदम। इस संसार का या इससे परे कोई संसार है इस ब्रह्मांड में, सब जगह दुख ही दुख है। कैसा दुख है, संभिन्नम अलग अलग दुख है। यहां शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, स्वर्ग लोक में भी दुख है। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं इंद्र को भी टेंशन बना रहता है, कोई यदि बड़ा जग करने लगता है तो इंद्र का को भूख प्यास कुछ नहीं लगता है, है? रात को नींद नहीं आती है कितना भी स्लीपिंग पिल दे। महाराज पृथ्वी जग कर रहे थे, इंद्र बड़े परेशान हो गए, पाखंड का निर्माण कर दिए, क्या क्या नहीं किए, तो दुख था। तो वहां भी दुख है। अन्नम यन्नम दुखे न संभिन्न, केवल भिन्नता है दुख में है? सब जगह दुख है, व्यक्ति दुख से ही ग्रसित रहेगा। यदि दुख से कोई छुटकारा पाना चाहता है, अभिलाषोपनीतम चम तत्सुखम, जो सुख का अभिलाषा करता है, जो सुख चाहता है, कहते हैं स्वपदास्पदम, उसे भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए। इस संसार अजय ऊपर का संसार दुखमय संसार है और भगवान का शरण ग्रहण ही एकमात्र सही है। तो कहते हैं क्षय समह, क्षय होने वाला है, खत्म होने वाला है। आ ब्रह्म भुवनालोको पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान कहते हैं यहां से लेकर के ऊपर के संसार तक सब आते हैं। चीर्णे पूर्णे मर्तलोकम विसंति एवं तय धर्म पना मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। पुण्य क्षीण होने के बाद सब खत्म हो जाता है। सर्वे क्षयंता निचया पततः अंत समुच्छ्रया संयोग विप्रजोगांत मरणांतम ही जीवितम। कुछ कुछ सुख तो जिसको हम सुख मानते हैं, कुछ कुछ सुख तो हमारे सामने ही खत्म हो जाता है। कुछ कुछ सुख तो हमारे सामने सर्वे क्षयंताम, सब खत्म होता है। कहते निश्चया, इसमें कोई दोरा नहीं है, आज नहीं तो कल। यदि कुछ बाकी रह जाता है तो बुढ़ापा खत्म कर देता है।
खाने पीने की वस्तु है लेकिन एपेटाइट नहीं है, देखने की वस्तु है लेकिन आंख में रोशनी नहीं है, सुनने का चीज है लेकिन कान सुन नहीं सकता है, तो कुछ तो बुढ़ापा खत्म कर देता है। और यदि कुछ बचा भी हुआ है तो कहते हैं मरणांतम ही जीवितम, मरणांतम जीवित रहते हुए कुछ खत्म होता है, और नहीं तो मरने के बाद ही, मरणांतम ही निश्चय ही मरने के बाद सब यहीं का यहीं रह जाता है। कोई एक छटा के ऊपर लेकर जाएगा, एक बीच के ऊपर लेकर जाएगा ना, जिदात कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, सब यहीं रहेगा। कितना सुंदर बात है कि सब सुख यहीं खत्म हो रहा है, कुछ बचा खुचा है वही मरने के बाद खत्म हो जाता है, कुछ भी साथ में नहीं आया। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं यही संस्प्रजा भोगा दुख जो न एवते आदवंतंत कौन्तेय नौते सूरमते बुधा। हे कुंती नंदन, जो व्यक्ति जानता है कि इस संसार का जो सुख है, जो इंद्रिय तृप्ति से या इंद्रियों से शरीर से कमाया हुआ धन है उसका जो सुख है, दुख जो न एवते, ये सुख नहीं है बल्कि ये दुख है। आदवंत, या तो आज खत्म होगा नहीं तो कल जरूर खत्म होगा। इसीलिए बुधा जो बुद्धिमान लोग हैं न रमते, उसमें रमण नहीं करते हैं, इस सांसारिक सुख दुख में वे लोग नहीं लगते हैं। तो वही कहते हैं क्षयिष्म, क्षण होगा, क्षणिक होगा, खत्म होगा, टेम्पररी है। और सातिशया लोक लोकांतर के जो सुख है एक से बढ़कर के ज्यादा है, कहते न निर्मलम, सब गंदा है, सब गंदा है, स्वच्छ नहीं है। इसीलिए देखिए संसार में जो सुख प्राप्त होता है वो कर्म करने से, कर्मचित्त, और स्वर्ग आदि लोगों का जो सुख प्राप्त होता है उसे पुण्यचित्त कहा जाता है। यहां पर आया हुआ है तथा एह कर्मचित्तो लोक क्षीयते, कर्मचित्त, कर्म से कर्म करके जो धन दौलत कमाया गया सुख प्राप्त होता है क्षीयते, खत्म होता है। एवं अत्र इसके अलावा पुण्यचितो लोके, पुण्य से प्राप्त हुआ जो सुख है यानी स्वर्ग आदि क्षीयते, वो भी खत्म होता है, वो भी खत्म होता है। तो इस श्लोक में प्रहलाद जी कहते हैं कि संसार का सुख तो तुम लोग देख लिया सब खत्म होने वाला है, ऊपर के संसार का यानी स्वर्ग आदि लोगों का सुख है वो भी खत्म होने वाला है। अब दोनों सुख को कहते हैं, चाहे स्वर्ग का सुख हो चाहे पृथ्वी का सुख हो, कहते न निर्मलम, अच्छा नहीं है, एक कंटामिनेटेड सुख है, परामर्श सुख है नहीं। यदि सुख दिखाई भी पड़ता है तो कहते हैं निर्मल, न निर्मलम, ये शुद्ध नहीं है, ये संसार शुद्ध नहीं है, स्वर्ग शुद्ध नहीं है, पुनः यहां पर आना पड़ेगा। प्रभुपाद जी निर्मल शब्द का अनुवाद किए हैं यहां पर, निर्मल मतलब स्वच्छ होता है, शुद्ध उत्पातों से रहित, यानी न निर्मलम यानी उत्पातों से रहित नहीं है, उत्पात है, इस संसार में भी उत्पात है और स्वर्ग आदि लोकों में उत्पात है, अशुद्ध है। और भगवान कैसे हैं, भगवान शुद्ध हैं, भगवान के शुद्धता का वर्णन करने के लिए तस्मात, मतलब देयरफॉर, तस्मात उक्तया, इसलिए ऐसा कहा गया है, भगवान के विषय में कहा गया है, तस्मात उक्तया, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है अदृष्टम अश्रुतम दूषणम। न तो किसी ने भगवान में कोई दूषण या प्रदूषण या कंटामिनेशन न तो कोई देखा है और न सुना है। भगवान पवित्र है, परम पवित्र है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। भगवान परम पवित्र है। देवता लो सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसंग्रम सत्यात्म ज्योनि, परम पवित्र है भगवान। अन्यत्र कई जगह वर्णन किया गया है। तो अदूषणम परम, भगवान कैसे हैं? दूषण यानी गंदगी से परम, उससे परे हैं, हैं? ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। तो जो व्यक्ति दूषण से परे है, जो व्यक्ति अशुद्धता से परे है, वही व्यक्ति हमारे अशुद्धता को दूर कर सकता है। हम लोग में अशुद्धता है, हम लोग कंटामिनेटेड हैं, हमारा जो आत्मा है वो कंटामिनेटेड हो गया, वो जीवात्मा हो गया है। तो वह जीवात्मा ये संसार के सुख से, संसार के विषय वस्तुओं से, चाहे स्वर्ग के विषय वस्तुओं से शुद्ध नहीं हो सकता है। न निर्मलम, उससे निर्मल नहीं हो सकता है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि इन सब से परे, जिनमें थोड़ा भी कंटामिनेशन नहीं है, ना तो कोई कहा है आज तक से, ना कोई सुना है, मूर्खों के अलावा, मूर्ख लोग कहते हैं, विद्वान लोग नहीं कहते हैं, मूर्ख लोग कहते हैं, मूर्खों के अलावा ऐसा भगवान के विषय में नहीं कोई कहा है, ये इन सबसे परे हैं। तो कहते हैं भक्त्या उक्त ईसम, ऐसा कहा गया कि वे इन सबसे परे हैं, उनमें उन इस में उन परम भगवान में यदि कोई भक्ति करने लगे, भजन करने लगे, भजता आत्मलब्धे, आत्मलब्धे लब्ध मतलब प्राप्त करना, और आत्म मतलब अपने आप को। हम लोग अपने को खो चुके हैं, हम लोग अपने को खो करके स्त्री मानते हैं, पुरुष मानते हैं, गधा मानते हैं, गाय मानते हैं, मच्छर मानते हैं, सुअर मानते हैं, अपने क्या क्या नहीं मानते, अपने को हम खो चुके हैं। तो जो व्यक्ति अपने को प्राप्त करना चाहता है, आत्मलब्ध, तो कहना भजताम, भजन करो। किनका भजन करो? जो सब प्रकार से शुद्ध हैं, जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है, न तो देखने में न सुनने में जो अशुद्ध हैं, उन शुद्ध पुरुष, परम पवित्र पुरुष का तुम भजन करो। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्त गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सभ्यांतर शुचि, वही व्यक्ति है जो कि पवित्र कर सकता है। इसलिए उस परम पवित्र व्यक्ति का भजस्व, भजन करो। भजताम आत्मलब्धये, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहता है, उसे उस पुरुष का भजन करना चाहिए। तो समराइज इस वर्ष इस श्लोक में प्रहलाद जी कहते हैं, इस संसार की वस्तुएं हमें सुख नहीं दे सकती है, संसार में सुख नहीं है। संसार से परे स्वर्ग आदि जो लोक हैं, जहां के सुख इस पृथ्वी लोक के सुख से तो ज्यादा है, लोक लोकांतरों का सुख भी एक दूसरे से ज्यादा सुख है, लेकिन ये सब भी न निर्मलम। कहते हैं ये सब भी क्षण मंगूर है, क्षयिष्णव क्षीण होने वाला है, और नॉन निर्मलम, इन निर्मल भी नहीं है, कंटामिनेटेड है। तो जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, आत्मलब्ध है, जो आत्मा को प्राप्त करना चाहता है, जो अपने को जानना चाहता है, हु एम आई अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो उसको चाहिए शुद्ध परम पुरुष का वह भजन करें। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? माइक
हरे कृष्ण क्षमा करो पुरुष बदलते हो, ये एक शरीर मिला है तपस्या करने के लिए, तपस्या करने जाओ तो ये हमको दुख मिल जाएगी, दुखाल अशाश्वतम दिया है। तो आपने बताया कि तप लोक में तप तो जो जाने अनजाने में तप होता होगा उधर से, तो ना ये शरीर तो हम तप नहीं कर सकते हैं, तप करने के लिए दिया है शरीर, लेकिन तप नहीं कर सकते क्योंकि ये दुख मिलता है, तप करे जाओ तो दुख मिलते रहता है।
तप का मतलब क्या होता है?
तप मतलब भगवान की भक्ति करना, जैसे मुंह से भगवान का नाम लेना, आंखों से
तप मतलब तपाना, तप मतलब तपाना, आग में तपाते हैं ना
जी,
तो तपाओ अपने को, मंगला आरती आओ, क्लास आओ, गुरु पूजा आओ, सोलह माला जप करो, चार नियम पालन, ये कलयुग का यही तपस्या है, यही तपस्या करो।
नहीं वो तो होता है, चार नियम होता है,
चार नियम होता है,
चार नियम पालन होता है,
ये तो नहीं होता है, चार नियम होता है, दूसरे को हिंसा नहीं करते हो कभी, कोई आपको तकलीफ देता है आपको गुस्सा नहीं आता है?
गुस्सा
सही सही बोलना,
गुस्सा आता है लेकिन गुस्सा नहीं करता हूं मैं।
तो गुस्सा आता है, जब आता है तो मतलब कि हिंसा कर रहे हो। चार नियम इतना आसान नहीं है, कभी कोई सुंदर वस्तु देखते हो तो अच्छा नहीं लगता पकड़ने के लिए
जी,
तब चार नियम कहां पालन कर रहे हो? प्रयास करो, करते रहना चाहिए। हम तो केवल ऊपरी दृष्टिकोण से चार नियम पालन करते हैं, मांसाहार नहीं खाना समझते हैं कि मांसाहार नहीं करना ही, मतलब मांस नहीं खाना, लेकिन बिना भगवान को भोग लगाए खाना वो भी तो मांसाहार है ना, दूसरे को दुख देना वो भी मांसाहार, मच्छर को भी मार देना बहुत दूर है। इलिसिट सेक्स वो तो फिजिकल हम, लेकिन मन में जो चल रहा है उसका वो भी तो है ही ना। तो चार नियम पालन करना सबसे बड़ी तपस्या है, इसको करो।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हर लोक में जो सुख है तो वो एक से बढ़कर जो सुख है, तो परम धाम में जब हम भगवान के धाम में जाएंगे दैट इज स्पिरिचुअल,
वो परम सुख।
हाँ वो परम सुख है,
परम सुख मतलब देयर नो कंपैरिजन।
हाँ तो ऐसा बताया जाता है कि नीचे के लोग जो है वहां पर टेक्नोलॉजी ज्यादा होने के कारण उधर ज्यादा सुख है स्वर्ग से, ऐसा सुनने ऐसा मैंने पढ़ा है ऐसा।
लेकिन सब सुख टेम्पररी है,
तो डिफरेंस क्या है? जो जो ऊपर के लोग में
कहते हैं ड्राई स्टूल और वेट स्टूल, बोथ आर स्टूल। नीचे का सुख हो चाहे ऊपर का सुख हो, ये दोनों टेम्पररी है, तो इसके चक्कर में ना पड़ करके परम सुख की प्राप्ति के चक्कर में पड़ना चाहिए, और वह है हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। और कोई प्रश्न? यस
हरे कृष्ण प्रभु जी, आप बता रहे थे कि कुछ भौतिक चीजें करना वो जैसे हॉस्पिटल खोलना वगैरह वो पुण्य में नहीं आता है,
पुण्य कर्म नहीं आता।
तो भागवतम में वर्णन आता है ये रांतिदेव महाराज का, तो वो तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ आध्यात्मिक मदद कर रहे हैं, वो तो सिर्फ खाना दे रहे हैं, तो उसका इतना भागवतम में वर्णन क्यों है? मतलब
वो भगवान के भक्त थे, परानंद तो महाराज रंतिदेव भगवान के भक्त थे, वो तो उनकी परीक्षा थी जब अंत समय में, जब वो बाज वही है ना, वो शिकार कैसे कैसे क्या है वो कथा, अपना जंघा दे दिए काट करके। अच्छा अच्छा ओके ओके ओके, रंतिदेव कथा क्या है मैं भूल रहा हूँ। हाँ कोई यदि आता था मांगा था देते थे, तो तपस्या करते थे, तो तपस्या था भौतिक नहीं है ये, तपस्या था, कोई आया उस मांगा दे देना चाहिए, है? अपना त्याग, सेक्रीफाइस। अध्यात्म में सेक्रीफाइस चाहता है, चाहिए ना, बिना सेक्रीफाइस का मंगला आरती नहीं आ सकते हो, नींद को छोड़ना ही पड़ेगा ना, तब मंगला आरती आ सकते हो। तो उसमें आध्यात्मिक क्या है, नींद को छोड़ना आध्यात्मिक क्या है, लेकिन मंगला आरती आ रहे हो। यदि उससे वो काम कर करके भगवान को भूल सकते थे तो भौतिक हो सकता था, भगवान को भूलते नहीं थे, भगवान का चिंतन करते थे। यहां लोग ऐसा करते हैं और कहते हैं आप जानते नहीं हो, मैं तो इतना हॉस्पिटल बनवा दिया, मैं इतने लोगों को खिलाता हूं, भगवान को भूल गया, भगवान याद भी नहीं करते हैं, भगवान से कोई संबंध नहीं है।
हरे कृष्ण बाबू जी।
अरे हरिदास, मैं सोचा हरिदास कहां रह गया, हनुमान और हरिदास दो आदमी तो हैं। हनुमान
जी, आप जो बोलेंगे प्रहलाद महाराज जो तपस्या किया था और ध्रुव महाराज जो तपस्या किया था, लेकिन ये इंद्र को क्यों डरा था, इंद्र ऐसे जो देखते क्यों इसको डरते, क्यों इसका कारण क्या है?
क्योंकि ये भौतिक संसार का स्वरूप है कि वहां पर भय रहता है, प फ ब भ म, तो स्वर्ग में भी भय है, तो इंद्र को भय था कि अरे हमारा पद प्राप्त कर लेंगे लोग, फिर मेरा क्या होगा। जैसे आपको कभी कभी भय होता है, कोई आपसे अच्छा गाने वाने आ जाता है तो आप माइक थोड़ा कम कर देते हो, आपको ये लगता है कि मेरा पोजीशन चला जाएगा, तो ऐसे ही भय वहां भी इंद्र को भी है।
ये तो हमारा भौतिक जगत का,
वो भी भौतिक जगत ही है, स्वर्ग लोग भौतिक जगह है,
ये कैसा होता है?
हाँ, वो भी भौतिक संसार में ही है, वो विभाग अलग है। अमेरिका को भी लोग स्वर्ग कहते हैं, ब्रह्मचारी लोग। भौतिक जगह है हाँ, ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्म लोक से लेकर के चिट्ठी पर्यंत था भौतिक जगह।
नहीं, ये जो इंद्र का जो सिंहासन है, ये को चिरस्थाई है ना, क्षणस्थाई
है,
ये चिरस्थाई
क्या है,
चिरस्थाई जो चिरस्थाई है, हमारा तो ये सिंहासन चिरस्थाई ना, धर्म 10 साल के 50 साल बचोगा, जो हमारा भजन साधन करके हम जाओगे,
आपके पास 100 साल है
हाँ,
इंद्र के पास वो भी डिफिनेट नहीं है, छीणे पूर्ण, जिस दिन पूर्ण छीण गया बुम नीचे आना पड़ा। जिस दिन एक बार महाराज नौस इंद्र बनकर चले गए थे ऊपर, समझे, तो इंद्र बनकर के आए, बहुत पुण्य खूब किए थे, इंद्र बनकर के आ गए, उस समय इंद्र पर श्राप था, वो नहीं थे, तो महाराज नौस को इंद्र बना दिया गया, तो चाहे मैं इंद्र हो गया, तो इंद्र की पत्नी सची होती है, वो तो मेरी होनी चाहिए, तो कमांड हो गए और सची को बुलाने लगे कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भोगना चाहता हूं। सची तो बेचारी सती है, भागते भागते देवगुरु बृहस्पति के पास गई, क्या करना चाहिए, तो गुरु जी ने कहा देखो आज वो कमांड है, काम में अंधा हो चुका है, तुम उसको बोलो कि यदि ब्राह्मणों के से जोते हुए पालकी पर आओगे तो मैं तुम्हारे साथ भोग कर सकती हूं। तो कमान थे, तुरंत ऑर्डर दिए, ब्राह्मणों को बुलाए, पालकी पर बैठ गए और चाबुक लिए थे, बेचारे ब्राह्मण लोग कभी पालकी ढोए नहीं थे, धीरे धीरे चल रहे थे, सर्प 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। ब्राह्मण गुस्सा, बदमाश, कहें क्या तू सर्प बनना चाहता है, जाओ सर्प बन जाओ, श्राप दे दिए। तो बहुत पुण्य कर गए थे, लेकिन एक सेकंड में बम नीचे आना पड़ा। तो यहां तो आपको 100 साल है, वहां वो भी नहीं है, वहां वो भी नहीं है, इसलिए जाने का सोचना भी मत। ओके, अब माइक दे दूसरे को, हाँ उधर पीछे। अच्युतानंद महाराज कहा करते थे, इफ यू हियर हिज क्लास है अच्युतानंद, वो केवल फटाफट श्लोक पढ़ेंगे, परपट ट्रांसलेशन, 5 मिनट बोलेंगे, एनी क्वेश्चन, वो बोलते हैं कि हमको इसमें अच्छा नहीं लगता है, प्रवचन करना अच्छा लगता है, क्वेश्चन आंसर में अच्छा लगता है, तो क्वेश्चन अच्छा होता है। हाँ जी,
नाम प्रभु, भजन करने का काम आसानी है, लेकिन
बहुत साल से भजन करने के बाद भी अगर एक भक्त को इवन आत्म साक्षात्कार का अनुभव नहीं होता है, इसका प्रॉब्लम कहाँ ढूंढने का है, मतलब क्या होता है इसका?
तो भजन में गलती नहीं है, हमारे करने में गलती है। बहुत भक्त कहते हैं प्रभु जी हमारा 16 माला हो गया, माला हो गया लेकिन जप नहीं हुआ। माला करने में और जप करने में अंतर होता है। माला खींचते जाओ 16 माला हो जाएगा, लेकिन जप करना मतलब सुनना, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। भजन में जितनी मात्रा में शुद्धता होगा उतनी मात्रा में हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। भक्ति के शुद्धता पर प्यूरिफिकेशन डिपेंड करता है। यदि भक्ति शुद्ध नहीं होगा तो प्यूरिफिकेशन होगा स्लो प्रोसेस से, धीरे धीरे होगा।
हरे कृष्ण।
पीछे दो लोगों के पास पास दी माइक, हाथ उठाए रहो तब लोग देंगे।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न ये था कि जैसे अगर कोई व्यक्ति जप करता है सारे भागवत गीता का सब कुछ अध्ययन कर चुका है और ये सब कुछ करने के बाद में लास्ट स्टेज में उनको सिर्फ जप में ही मन लगता है और वो जप करने के सिवा वो उनको कुछ मंदिर जाना या कहीं यात्राओं में जाना या कहीं भी उसमें रुचिकर नहीं लगता, यहां तक कि अगर किसी से 10 मिनट चर्चा भी करती हो तो वो उनको लगता है कि मैं चर्चा से अच्छा मैं अपना जप में ही लून रहा हूं और जप में उनको 20 माला 30 माला 50 माला 60 माला तक करते हैं और अन्य कहीं भी रुचि नहीं लगती हो, तो ऐसे व्यक्तियों को किस दृष्टि से देखना चाहिए?
पहला नंबर तो उस व्यक्ति को अपने आप में ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। यदि उसका जप में मन लग रहा है, जैसे हरिदास ठाकुर न तो दर्शन करने गए, न मंगला आरती आए, न भागवत पढ़े, न भागवत सुने, वो केवल जप करते रहे और वो हो गए नामाचार्य। उनको टेस्ट करने के लिए कौन कौन नहीं आया था, माया देवी स्वयं आई थी लेकिन वो पास कर गए। तो जो व्यक्ति यह सोचता है उसको अपने आप ईमानदार बनना पड़ेगा कि मैं ये कर रहा हूं ये सही है गलत है। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है कि भक्तों के लिए गुरु और वैष्णव का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। जब भी तब होगा जब गुरु और वैष्णव का आशीर्वाद हो। गुरु जो कहता है वह करना चाहिए। एक बार जय पताका महाराज प्रभुपाद जी को पत्र लिखे कि प्रभुपाद जी ये मायापुर में इतना काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का ये सब चल रहा है, मेरा जप नहीं हो पा रहा है, मैं जप करना चाहता हूं। तो प्रभुपाद ने कहा आपका जप वही है, आप कंस्ट्रक्शन कराओ वही जप है। तो गुरु जानता है केन केन प्रकारेण मनो कृष्णा निमिषेत, मन को कृष्ण में लगाना बहुत जरूरी है। इधर जप तो कर रहे हैं लेकिन कहीं वो गुरु और चेले वाला का रास्ता नहीं हो गया। एक कथा बता रहा हूं। एक गुरु जी थे और उनके 3 बदमाश चेले थे। तो एक दिन प्रसाद बनाने के लिए लकड़ी नहीं था तो गुरु जी ने कहा कि जाओ बेटा लकड़ी जंगल से लेकर के आओ प्रसाद बनाने के लिए। तो चेले कहे गुरु जी अभी हमारा जप करना बाकी रह गया है। तो नहीं, पहले गुरु जी ने कहा चलो बेटा प्रसाद बनाना है आ जाओ। कहा गुरु जी अभी जप करना बाकी रह गया है। ठीक है मैं ही बना देता हूं, जाओ लकड़ी लेकर के आओ। कहते हैं गुरु जी अभी जप करना बाकी रह गया है। पानी लेकर के आओ, गुरु जी अभी जप करना बाकी रह गया है। गुरु जी भोजन बना दिए, भगवान को भोग लगा दिए, ये प्रसाद का समय हुआ। गुरु जी ने कहा बेटा प्रसाद खाने आओ। कहते हैं गुरु जी आपका 3 अवज्ञा किया, चौथा अवज्ञा नहीं करेंगे हम सब। तो ऐसा चेला मत बनना भैया, ऐसा भगत डोंट चीट योर सेल्फ, अपने आप को धोखा कभी मत देना। ये हमारा कभी कभी ए जैसा कहता है वो मन कहता है, मन बड़ा धोखा देता है।
लेजी बनाने के लिए, काम न करने के लिए नहीं, जब मन लग रहा है वहां भी मन नहीं लग रहा है उसका। ये शुद्ध भक्तों का परिचय, हरिदास ठाकुर का परिचय है। हम लोग इसे प्रभुपाद जी हम लोगों को वर्न किए हैं कि वी शुड नॉट इमिटेट हरिदास ठाकुर, हमें हरिदास ठाकुर का अनुकरण नहीं करना चाहिए। सोलह माला जप करो, वी आर 16 राउंडर। एक बार तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी से कहे कि प्रभुपाद हमारे भक्त लोग बड़ा अच्छा से जप कर रहे हैं और एकादशी के दिन 25 माला जप कर रहे हैं। तो ओ वेरी नाइस, वेरी नाइस। तमाल कृष्ण महाराज समझे कि प्रभुपाद जी बड़े खुश हैं। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद तो क्या हम इस्कान में नियम बना दें कि डेली 16 माला जप करना और एकादशी के दिन 25 माला? प्रभुपाद सेड नो, वी आर 16 राउंडर। कहा कि नहीं, हम 16 माला जप करने वाले हैं। तो ये प्रभुपाद जी का आदेश है, 16 माला जप करना। अरे 16 माला हो जाए वो भी अच्छा, हमारा 16 माला भी नहीं होता कभी कभी। जप माला हो जाता है 16 माला, लेकिन जप का मैं बात कर रहा हूं, एकाध दो हो पाता है। जप मतलब तुंडवता नवनी बित तुंडावली लबदेत, एकांत में प्रवेश करने वाला जो दिल में आ जाए। ठीक है, जप के लिए सब त्याग सकते हो। जयति जयति नाम आनंद रूपम मुरारी विरमितनि धर्म ध्यान पूजादि यत्नम कथमपि सुकृतम प्राणि नाम जत परमृत एकम जीवनम भूषणम में। हे नाम प्रभु आपका जय हो, जय हो, जय हो, आपके लिए मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, अपना धर्म पूजा पाठ सब छोड़ दूंगा मैं। लेकिन वो रूप गोस्वामी थे, हम लोग उस प्लेटफॉर्म पर नहीं है। ठीक है, और प्रश्न, किसका प्रश्न था?
हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए?
भगवान कहते हैं गीता में कि मुझे कोई भक्ति से प्राप्त कर सकता है। भक्तिया माम अभिजानाति जाऊं जस अस्मि तत्वतः, जैसा हूं मैं वैसा कोई जान सकता है तो भक्ति के द्वारा। तो भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और प्रश्न उठता है कि भक्ति कैसे की जाए? तो प्रभुपाद जी भगवान चेतन महाप्रभु सरल तरीका बताए हैं भक्ति करने के लिए। भक्ति का मतलब भाव धातु से भक्ति बनता है। भाव मतलब हो जाना, भगवान का हो जाओ बस। भगवान गीता में कहते हैं भक्ति के लिए मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कु, ये भक्ति है। अपना मन भगवान में लगाएं, भगवान को प्रणाम करें, भगवान का दर्शन करें। और प्रहलाद जी नवधा भक्ति का वर्णन किए हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साकिम आत्मनिवेदनम, भगवान के विषय में सुनना, भगवान का गुणानुवाद करना, भगवान का चिंतन करना, ये सब भक्ति है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, प्रचार करो, ये भक्ति है। प्रभुपाद जी कहते हैं चार नियम का पालन करो, 16 माला जप करो, ये भक्ति है। तो भक्ति भक्त से प्राप्त होता है, तो भक्त के आश्रय में रह करके भक्ति करना चाहिए। अकेला भक्ति नहीं हो सकता है। सताम प्रसंगा मीर्ज संविदो हवन तीर्थ करणारायण कथा तज्जो सनादाद अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, भक्ति अनुक्रमिष्यति। भक्ति का क्रमशः विकास होगा कैसे? सताम प्रसंगा, साधुओं की संगति में रह करके। भगवान कपिल देव माता देवती से बताए। ठीक है, किनका प्रश्न था? प्रश्न वाले कहां गए? ओके, ठीक है ना।
वे कैसे हमारे साथ हर पल रह सके कृष्ण भगवान? कृष्ण भगवान कैसे हमारे साथ हर पल रह सकते हैं?
आप खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, पेट एक दिन भर जाएगा। तो ऐसे भगवान का भजन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जितना दिन करोगे उतना तो भगवान आपके साथ में रहेंगे। जैसे लोहा, मैं लास्ट समझाने दिया, लोहा जो है जब तक से लोहा को आग में रखोगे वो गर्म रहेगा, लोहा आग का रूप धारण कर लेगा, लेकिन बाहर निकाल दो ठंडा हो जाएगा। तो कृष्ण में लगे रहो, कृष्ण का नाम लेते रहो, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण का कथा सुनो, गीता भागवत पढ़ो, भगवान का सेवा करो, मंदिर मार्जन करो, समस्त इंद्रियों को भगवान में लगाए रहो। और कोई प्रश्न? ओके, माइक उधर दीजिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि हरि नाम बोलो वैकुंठ चलो ऐसे कुछ, तो सिर्फ हरि नाम बोलने से ही हम समर्पित हो सकते हैं वैकुंठ जाने के लिए या और कोई प्रयास करना पड़ेगा?
और कुछ नहीं करना है, केवल हरि नाम बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे सप्तम अस्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम नो कचित, यही काम करना है। नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करो और कभी भूलो मत, बस यही सिद्धांत है और सब सहयोग करता है इसमें, यही मुख्य सिद्धांत यही है।
थैंक यू प्रभु जी।
एनी अदर क्वेश्चन? हरिदास को भूख लग गया है। ऑल राइट, सो हरिदास को मैं मांसाहार नहीं करूंगा, चार नियम पालन करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में उसको दुख लग जाएगा। ग्रंथराज भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।